नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 84वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कई राज्यों में किसानों के समर्थन में महापंचायतों का सिलसिला भी जोर पकड़ चुका है। इन महापंचायतों में किसान भारी तादाद में जुट रहे हैं और मोदी सरकार पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का दबाव बना रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से आई ये तस्वीरें भी सरकार पर दबाव बनाने की ही कोशिश है। किसान नेता राकेश टिकैत आज गाजीपुर बॉर्डर पर हल लगाते नजर आए। इशारा साफ है, किसानों ने यहां भी और दिल्ली की अन्य सीमाओं पर अपना धरना लंबा खींचने की तैयारी कर ली है। आज पहले राकेश टिकैत ने यहां फूलों के पौधे लगाए और फिर हल चलाकर मक्का और जौ बोने की तैयारी में है। किसान भी अब समझ गए हैं कि लोगों के दिमाग में छाना किस तरह से है। मुद्दा तो मजबूत होना ही चाहिए, जो है भी तस्वीरें भी ऐसी हों कि लोगों के दिलों में गहरी बैठ जाए। तो सरकार पर दबाव बनाने की चौतरफा कोशिशों में से एक कोशिश राकेश टिकैत ने एक यहां और की है। और उधर तैयारी गुरुवार की भी है, जब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देशव्यापी रेल रोको की घोषणा की गई है। अच्छी बात यह है कि किसानों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए रेल रोको आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने का फैसला किया है। किसानों का यह ऐलान अचानक नहीं हुआ, उन्होंने यह ऐलान काफी पहले ही कर दिया था। उनका कहना है कि अपनी मांगों की ओर देश का ध्यान खींचने के लिए यह जरूरी हो गया है। इस दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेल की पटरियों पर बैठेंगे और रेलगाड़ियों की आवाजाही ठप करेंगे।
सरकार सुन नहीं रहा है, कोई भी हमारा बात सुन नहीं रहा है। हमारा 240 लोग मर गया 0 डिग्री टेम्परेचर में। हम सबको खिलाते हैं मगर सब खाता है, मगर हमको हम मर रहे हैं बिना खाए, कोई देखने वाला नहीं है। तो देशवासियों हो, सरकार हो, जनता हो, सबको नजर खींचने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं।
जो मुसाफिरों की दिक्कत आएगी उसको लेकर आप लोगों का कोई विचार की कैसे
नहीं, विचार होता है ऐसे 15 दिन पहले हम घोषणा किया है, कोई अचानक नहीं है। कोई प्रतिवाद के लिए कुछ रिएक्शन तो होता ही है, कुछ लोग को तकलीफ होता है, मगर जो लोग को तकलीफ होगा उससे ज्यादा तकलीफ हमारा है।
रेल रोको आह्वान को देखते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने आज एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें रेलवे के सभी 16 जोन के जनरल मैनेजर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल शामिल हुए। बैठक में मुसाफिरों की सुरक्षा और सुविधा और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने पर विचार किया गया। रेलवे ने फिरोजपुर और अंबाला डिवीजन में कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही रोकने का फैसला किया है।
जो संवेदनशील इलाके हम लोगों ने चिन्हित किए हैं उसमें अधिकांश क्षेत्र जो है वो नॉर्दर्न रेलवे का फिरोजपुर डिवीजन, अंबाला डिवीजन और कुछ पार्ट जो है वो दिल्ली डिवीजन का है। और उसके अलावा छिटपुट जो है वो जैसे थोड़ा बंगाल में है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार में है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स जो है वो हम लोगों ने इन्हीं जगहों पर किया, पंजाब हरियाणा और दिल्ली में।
पंजाब हरियाणा और दिल्ली। और कितनी बटालियन फोर्सेस रहेंगी सर आपके?
अभी हम लोगों ने जो हमारा नॉर्मल डिप्लॉयमेंट है उससे एडिशनल हमने 20 कंपनी जो है अभी इसके लिए और दी है और लगाया।
कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध का खमियाजा बीजेपी को होने लगा है। पंजाब से बीजेपी के लिए खराब खबर आई है, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। म्यूनिसिपल काउंसिल के 1815 वार्ड्स में से 1199 वार्ड्स में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 289, बीजेपी को सिर्फ 38 और आपको 57 सीटें ही मिल पाई हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगमों की 350 में से 281 सीटें भी कांग्रेस की झोली में गई हैं। शिरोमणि अकाली दल को 33, बीजेपी को 20 और आपको सिर्फ 9 सीटें ही मिल पाई हैं। बाकी अधिकतर सीटें बीएसपी के, सीपीआई और निर्दलियों को मिली है। साफ तौर पर इन निकाय चुनावों में इस बार हवा निर्णायक तौर पर कांग्रेस की ओर बह रही है। उसे किसानों के गुस्से का, बीजेपी से गुस्से का फायदा मिल रहा है। अगर 2015 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों से तुलना करें तो उस समय बठिंडा, होशियारपुर, मोगा और पठानकोट जिलों में कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि अब ये संख्या बढ़कर 149 हो गई है। बठिंडा नगर निगम में तो कांग्रेस 53 साल बाद सत्ता में आई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू होने के बाद ये पहला बड़ा राज्यव्यापी चुनाव है। और क्या इसका नतीजा नहीं बता रहा कि किसान कृषि कानूनों को लेकर कितने नाराज हैं? ये भले ही स्थानीय निकाय चुनाव रहे हों जिनमें स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन लोगों ने वोट डालकर अपना मत तो बता ही दिया कि पंजाब के हर किसान के लिए खेती सबसे पहला, सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। आने वाले महीनों में अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है विधानसभा के, पंजाब में भी हैं और कृषि कानूनों का मुद्दा हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा साबित होने जा रहा है। जो लोग इस किसान आंदोलन को पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन बताने में जुटे थे और कुछ इसे खालिस्तान तक से जोड़ रहे थे, वो अब समझ गए कि इसका विस्तार दूर दूर तक है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट किसान भी इस कृषि आंदोलन में बराबर के भागीदार हैं और यही वजह है कि बीजेपी के माथे पर अब पसीना दिख रहा है। किसान महापंचायतों और खाप पंचायतों में किसानों को मिल रहे भारी समर्थन से सरकार के माथे पर बल पड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, बिजनौर, अलीगढ़, बड़ौत, मेवात, यमुनानगर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, सिरसा, दौसा, ऐसी तमाम जगहों पर किसान महापंचायतों में जो भारी भीड़ है वो बता रही है कि कृषि कानूनों को लेकर किसान दरअसल सोच क्या रहे हैं। रोहतक में बुधवार को हरियाणा सर्व खाप पंचायत हुई जिसमें किसान आंदोलन को सभी खापों के समर्थन का फैसला हुआ। ये साफ कहा गया कि किसान आंदोलन को लेकर खाप पंचायतें अपनी ओर से कोई अलग फैसला नहीं लेंगी, जो भी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लिया जाएगा उसी पर अमल किया जाएगा। यही नहीं, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामाजिक बहिष्कार का भी फैसला खाप पंचायत में किया गया और किसानों की मौतों को लेकर जेपी दलाल के बयान की निंदा की गई। जेपी दलाल ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए कहा था कि ये सब बीमारी से मरे हैं और इससे किसान काफी नाराज हैं। यह भी फैसला लिया गया कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो नेताओं के लिए ये मुश्किल दिन है।
अमेरिका के अंदर दो लीडर बैठे थे, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा लीडर ने उसका क्वेश्चन आंसर दिया था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। लेकिन 303 सीट भाजपा जी ने, संसद देश ने एक तरफा इलेक्शन चुनकर उनको बहुमत प्राप्त कर दिया और डेमोक्रेसी का डिक्टेटरशिप इंग्लिश में कहते तानाशाही का रूप धारण कर दिया। नहीं तो इतना बड़ा धन दौलन ये था क्या? MSP का और ये अपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का कंप्लीट करके किसानों को भेज देना था।
ये बैठक थी कि ये बीच में जो है ना अफवाह फैला दी थी कि ये किस्म की कमेटी वगैरह का, कमेटी का कोई जिक्र नहीं है। कमेटी जो उनकी बन रही है ना वही निर्णय लेगी। हम तो सबके सब पूरा हरियाणा की जो खापे है ना उनका सहयोग करेंगे।
इस आंदोलन को सरकार निष्ठ करने की कोशिश कर रही है और इसको खापों ने फैसला मीटिंग कराया कि इसको और गति कैसे प्रदान की जाए, इस आंदोलन को सुचारू रूप से और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके विषय में मीटिंग थी और हमने ये फैसला ले लिया। तमाम खापों के सरदारों ने तन से मन से धन से जो हमारा नेतृत्व फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। न पंच बदले जाएगा न मंच बदले जाएगा, वो हमारा नेतृत्व करेंगे। उस नेतृत्व को ये पूरा समाज, पूरी खापे सल्यूट करती है।
तो न पंच बदलेगा न मंच बदलेगा, किसानों का जज्बा साफ नजर आ रहा है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी आलाकमान इस बात पर माथापच्ची कर रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जाटों की नाराजगी को किस तरह दूर किया जाए। मंगलवार को इस सिलसिले में गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की तो बुधवार को पशुपालन राज्य मंत्री और बीजेपी के बड़े जाट नेता संजीव बालियान के घर बैठक हुई। इन बैठकों में बीजेपी आलाकमान ने कहा है कि पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हो रही खाप पंचायतों के पास जाएं, कृषि कानूनों को लेकर लोगों की शंकाएं दूर करें और उन्हें कृषि कानूनों के फायदे समझाएं।
हर रोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ी बड़ी महापंचायतों से बीजेपी की नींद उड़ गई है। सांगवान, दहिया, दलाल, बाल्यान जैसी बड़ी जाट खापों ने भी महापंचायत कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बीजेपी को दिखने लगा है कि जाट लैंड में उसकी जमीन कमजोर पड़ने लगी है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। राकेश टिकैत भी जाटों की बाल्यान गोत्र से है जिसके प्रमुख उनके भाई नरेश टिकैत है। जेपी नड्डा और अमित शाह ने बीजेपी के जाट नेताओं को खाप पंचायतों को समझाने के लिए कहा है।
एक अलग प्रकार का ये भ्रम पैदा करने की कोशिश एक सच्ची कौम में, एक भोली कौम में जिसे किसान कहते हैं उनके मन में डालने की कोशिश की है और हमारा ये फर्ज बनता है क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, हम सच्चाई जानते हैं कि इन बिलों से तो केवल लाभ होने वाला है किसानों को। उनके बीच में पहले भी हम जाते रहे, कोई नई बात नहीं है, फिर लगातार उनके बीच में जाएंगे और जो भ्रम है उसको दूर करेंगे। खाप पंचायत के जो मुखिया हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे घर के लोग हैं। अगर हमारे घर के लोगों के मन में कोई भ्रम है तो घर के लोगों से, परिवार के लोगों से बैठ के बातचीत करना और सच्चाई बताना कि साहब ये जो बिल हैं ये आपके जीवन में लाभ देने वाले हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको लाभ देने वाले हैं।
सूत्रों की माने तो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। जयंत चौधरी की महापंचायतों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। बड़े जाट नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देकर उन्होंने गलती कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हरा देने वाले मुजफ्फरनगर के सांसद और मंत्री संजीव बाल्यान की डगर सबसे कठिन है। बुधवार को उन्होंने भी जाट नेताओं के साथ अपने घर में बैठक की। लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी की जाट मीटिंग को कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दिया है।
सरकार को बैठक कर लें तो इससे बेहतर यह है कि बैठक करें कि किसान का जो मूल समस्या है उसका हल कैसे निकाला जाए। किसान की बात मानोगे नहीं, जात पात की बात करोगे, अब गोत्र की बात उछाल रहे हैं। अगर अमित शाह जी ये सोचते हैं कि गोत्र की बात करके, खाप की बात करके आप किसानों को मना लोगे, आप अभी तक किसान के मिजाज को समझ नहीं पाए।
बीजेपी की जाट नेताओं की बैठक को राकेश टिकैत ने उनकी सरकार पर आखिरी कील करार दिया।
अब ये खालिस्तानी बता रहे थे, अब ये नया सब ले आए जाट लैंड वाला, यही इनका नाश का कारण बनेगा।
अच्छा,
तो ये जो बांटने का काम कर रहे हैं यही इनका इलाज करेगा। ये गलत चीजें हैं, देश को तोड़ने का काम ना करेंगे। पहले खालिस्तानी बताते थे, अब जाट लैंड बताने लगे।
इसमें मैं कोई तमाम सारे नेता थे, संजीव बालियान थे, उसमें गलत चीज है कि आप किसानों को समझाइए।
वो तो वही बताएंगे ना, क्या इनको उन्होंने ही वोट दी, दूसरी बिरादरी ने किसी ने वोट दी थी इनको।
मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट चौधरी अजीत सिंह को छोड़कर बीजेपी में चला गया था। बीजेपी को लगता है कि अगर मुसलमान और जाट वापस हो गए तो उन्हें 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 40 सीटों का नुकसान हो सकता है।
अगले महीने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। बीजेपी को पता है कि अगर वाकई में 2022 की अच्छी तैयारी करनी है तो पंचायत चुनाव में अच्छा करना होगा, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही वजह है कि जो तमाम महापंचायतें खाप पंचायतों से बीजेपी का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए जाट नेता बैठे हैं और वापस खाप पंचायतों के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, समझाएंगे। लेकिन नजरें अगले महीने के पंचायत चुनाव पर। दिल्ली में सहयोगी अंडरी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो अगले महीने ही उत्तर प्रदेश में पहला बड़ा जो इम्तिहान है बीजेपी का वो होना है, और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के मौजूदा आंदोलन में जाट समुदाय की भूमिका उस दिन से और गाढ़ी हो गई जिस दिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए। 28 जनवरी को राष्ट्रीय लोकदल के नेता और जाट नेता अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा था कि अभी चौधरी अजीत सिंह जी ने बीकेयू के अध्यक्ष और प्रवक्ता नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी से बात की है, चिंता मत करो, किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबको एक साथ होना है, साथ रहना है, ये संदेश दिया है चौधरी साहब ने। और इसके अगले दिन जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने पहुंच गए और फिर वो जाट राजनीति जो चुनाव में अक्सर पार्टी लाइन पर बिखर जाती थी वो एक लाइन पर चलती नजर आई। 29 जनवरी को जयंत चौधरी ने इसका संकेत दिया जब उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने की जरूरत है, मुद्दों के लिए उठो और उसी तरह से वोट भी करो। हाँ, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने भले ही बीजेपी के लिए वोट किया हो लेकिन उन्हें भी सरकार की नीति के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। ये पहली बार नहीं है जब चौधरी साहब ने टिकैत परिवार के लिए स्टैंड लिया है और ये आखिरी बार भी नहीं है। और किसानों के आंदोलन से जाट बेल्ट में बीजेपी की राजनीति बिखरती दिख रही है, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं खास मेहमान जगदीप संधु जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में केवी प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार हमें हमारे साथ होंगे। संधु साहब, आपका स्वागत है। अब जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसान झुकने को तैयार नहीं है और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही, तो इसका पहला असर जो है वो अब चुनाव में दिखना शुरू हो गया। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में दिखा, अगले महीने पंचायत चुनाव है यूपी में, उसमें दिख सकता है, और जो जाट बेल्ट है खासतौर पर उसे लेकर ज्यादा चिंतित है बीजेपी। क्या बीजेपी कैसे संभालेगी इसे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये जो जाट बेल्ट और जाट लैंड, ये जाट बेल्ट और जाट लैंड का एक जो नाम उछाल रहे हैं ये शायद उचित नहीं है, क्योंकि ये सारा समूचा प्रदेश, इसमें कई तरह के समूह हैं, कई तरह की जातियां हैं। ठीक है कि जाट अग्रणी हैं, ज्यादा मात्रा में हैं, लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश को हम देखें और किसानी का जो परिवेश है उसको अगर हम देखें तो वो एक ग्रामीण समूह में है जिसमें सभी जातियां समायोजित हैं। तो इसको जाटलैंड कहना या जाट प्रदेश कह देना ये मुझे उचित नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि ये किसान प्रदेश कह देना इसके लिए उचित शब्द हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में जो किसान की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं किसी तरह से गौण करने की कोशिश की। उसके ये आज परिणाम है कि एक समय था कि जब किसान की राजनीति देश के पटल पे बिल्कुल मानी जाती थी और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी, जिसके साथ चौधरी देवीलाल हैं या चौधरी चरण सिंह हैं, पुराने नाम जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमेशा किसान की राजनीति की और वो किसान की राजनीति में सारी जातियां, भले ही उसमें दलित, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अगर हम ध्यान से देखेंगे जहां किसान है वहां सभी लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको केवल जाटलैंड कह देना या जाटों की राजनीति कह देना ये मैं उचित नहीं मानता। ये किसानों की राजनीति है और हमेशा से होती रही है, किसानों के मुद्दे हमेशा से आते रहे हैं और हमेशा से प्रमुख रहे हैं। और जब भी ग्रामीण परिवेश को, उसके मुद्दों को अगर हम लेंगे या उसके मुद्दों को कोई भी नेता या कोई भी अग्रणी समाज लेगा, तो वो, अब देखिए, अब बिहार में देखिए तेजस्वी ने जो किया या तेजस्वी को जो बढ़त मिली वो किस लिए मिली, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश के जो एक एक बहुत बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का, उसको तेजस्वी ने बड़े जोर शोर से उठाया। अब ये ग्रामीण परिवेश के मुद्दे हैं, अगर इन्हीं को अगर हम सामने रखेंगे तो मैं मान सकता हूं कि इनका प्रभाव जो है राजनीति में होगा, और उसके लिए कोई भी अगर राजनीतिक पार्टी होगी तो उसको उस प्रभाव को झेलना पड़ेगा।
जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के वी प्रसाद भी हैं। प्रसाद साहब, जो बात अभी जगदीप संधू जी कह रहे हैं कि इसे सिर्फ जाट बेल्ट के तौर पर देखना ठीक नहीं है, पूरे किसानों का मुद्दा है, ये पूरा राज्यव्यापी देशव्यापी मुद्दा है, इसको अलग अलग करके देखना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी का जिस तरह से मैनेजमेंट नजर आ रहा है उसे पहले सबसे ज्यादा नाराजगी जो है वो जाटों के बीच में लग रही है, उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दिख रही है, जिस तरह का मैनेजमेंट पिछले एक दो दिन से दिख रहा है उसका किसानों के बीच जाने का, आप किस तरह से देखते हैं इस नाराजगी को और बीजेपी को कितना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है कृषि कानूनों के मुद्दे पर?
देखिए, सवाल तो ये है कि ये तो सच्चाई है कि कृषि और कृषक के बीच की समस्या है और उसी को लेकर ही पिछले 70-80 दिन से जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डरों पे वो हम लोग देख रहे हैं कहीं। और सवाल रहा, सवाल चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतर लोग जो माना जा रहा है जो कि गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो जाट समुदाय से हैं, तो शायद इसलिए उसको उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। पंजाब में भी काफी हद तक, क्योंकि कृषि और कृषक जो है जाट समुदाय से अपना आप ताल्लुकात रखते हैं, उसकी वजह से भी आप ये बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कृषि या जो है कृषक के बीच में समस्या है और वही, और चूंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो कानून सरकार की तरफ से पार्लियामेंट ने पारित हुआ है वो उसके पर जो बात है वो हम समझाते हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, एक राजनीतिक पार्टी है, वो सत्ता में है, वो दिल्ली में सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में है, तो उनकी अपनी समझ है, उनका अपना, उनको पता है कि किस तरह से वो देखते हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, क्या वो दृष्टिकोण कैसे देखा जाए। क्योंकि यहाँ पे करीब पिछले दो दिनों से जो खबरें भी छपी और कई चीजें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली माफ कीजिएगा यूपी के, दिल्ली के साथ सटा हुआ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उधर राजस्थान के कुछ इलाके और इधर आप देखिए हरियाणा में, यहाँ पे जाट काफी समुदाय पे काफी इनका दबदबा रहा है और इस तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका दखल काफी दिनों से रहा है और उनकी वर्चस्व भी रहा है। तो वो जाहिर सी बात है कि ये चीज कोशिश होती है हर राजनीतिक पार्टी में कि क्या, किस तरीके से, क्या से व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष, जाति विशेष कैसे इस चीज को सुलझाए और कैसे इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटा के देखें या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें।
जी जगदीप संधु जी, सर्दियां भी अब लगभग निकलने को हैं, गर्मियों की तैयारी है, किसान लंबे आंदोलन की तैयारी में है, क्या दिख रहा है आपको, किस तरफ जा रहा है, कोई समाधान आपको निकट भविष्य में दिख रहा है या नहीं?
जी, जहां तक मांगों का सवाल है, किसानों की मांगों का सवाल है और किसानों ने इन तीन बिलों में जो प्रावधान है उनको बहुत गहन से समझ लिया है, तो इसलिए उनको लगता है कि जब तक इसको इसका स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक वो शायद अपना कदम पीछे नहीं लेंगे। और किसानों के लिए ये अब एक अपनी जमीन बचाने का, अपने जनरेशन बचाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और किसानों में दूसरी जातियां भी शामिल हैं, क्योंकि जो किसानों के साथ काम करते हैं उनमें भले दलित हों या भले दूसरे किसी और जाति से हों, वो भी शामिल हैं। अगर आप जैसे जाटों की बात करते थे या जाट लैंड की बात की जाती है, ठीक है कि दिल्ली के आसपास ये आंदोलन हो रहा है और दिल्ली के आसपास जाटों की जो संख्या है किसानी में वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मान लीजिए यही बात अगर ये आंदोलन महाराष्ट्र में होता तो वहां मराठे दिखाई देते। और ये आरोप आक्षेप जो अग्रणी जातियां हैं उन पे कभी कभी लगते भी रहे हैं कि वो दबंगई करते हैं या वो अग्रणी रहते हैं, लेकिन ये समायोजित था एक सामान्य जन आंदोलन की तरह, उस तरह से मैं देख रहा हूं। और मुझे ये लगता है कि जब मैंने पहले दिन जब सिंघू बॉर्डर पे लोग आए थे और वो उन्होंने मोर्चा किया था, तब से मैं यही कह रहा हूं कि इसमें वार्तालाप में कई दौर होंगे। कई लोगों का कहना था कि 3 या 4 दौर में वार्तालाप पूरी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद बहुत लंबा खिंचेगा। और अब लगता है कि जो इन लोगों ने, जो किसान के जत्थेबंदियों ने और सामूहिक किसान संगठन ने जो निर्णय लिए हैं और जिस प्रकार वो अपने स्टैंड पे अडिग हैं, वो मुझे नहीं लगता कि ये डेडलॉक बहुत जल्दी कोई सॉल्व होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये मना कर दिया है कि जो इसमें प्रावधान है उनमें अगर कोई सुधार करने की गुंजाइश हो, बिल्कुल साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि तीनों बिलों को वापस लिया जाना चाहिए और साथ में जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके लिए भी उनका दबाव निरंतर बना हुआ है, क्योंकि ये अगर इसमें किसानों की तरफ से अगर देखा जाए, उनके दृष्टिकोण को अगर देखा जाए, तो उनके लिए ये अस्मिता का सवाल बन चुका है। और इसके साथ साथ जो दूसरे कामगार लोग हैं, कामगार वर्ग हैं, समाज के अन्य वर्ग हैं, वो भी इसको इसमें शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पीछे प्रावधान हुए हैं और जो जिसमें संशोधन दूसरे तरह के कानूनों में हुए हैं उनसे उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आज के जो नतीजे पंजाब में दिखाई दिए हैं उसमें पहले ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो ग्रामीण क्षेत्र में कम है और शहरी क्षेत्र में अधिक है, लेकिन आज जो शहरी क्षेत्र के जितने भी नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई भी अप्रत्याशित अपेक्षित सफलता न मिलना ये जताता है कि ये जो आंदोलन है इसका प्रभाव कितना व्यापक है।
जी, और प्रसाद साहब, किसानों ने इसे अपनी अस्मिता का सवाल बना लिया है। किसान अब ढंग से समझ गए हैं कि तीनों कृषि कानूनों में क्या है। उधर सरकार भी जानती है कृषि कानूनों में क्या है। सरकार ने कहा भी है कि वो संशोधन करने को तैयार है, किसान अपनी आपत्तियां बताएं, लेकिन किसान चाहते हैं कि तीनों के तीनों कानून वापस हों। तो रास्ता निकले तो कैसे निकले? सरकार इसे अस्तित्व का सवाल बना रही है, किसान अस्मिता का सवाल बना रहे हैं, तो कैसे होगा? चीन का मुद्दा भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कुछ सुलझना शुरू हुआ, किसानों का मुद्दा कब सुलझेगा? क्या लगता है आपको, सरकार अब अपनी तरफ से कोई निर्णायक पहल कर सकती है?
देखिए, सरकार की तरफ से जो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में जो बात रखी है वो एक मानिए कि वो एक सरकार की तरफ से स्पष्ट बात कहेगी कि हम ये किस वजह से चाहते हैं। सरकार ने अपने हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है दोनों सदनों में, उन्होंने कहा कि हम जो किसान, जो छोटे किसान है जिनका करीब 12 करोड़ की उन्होंने बात कही, जो आंकड़ा दिया, तो उनके हित में ही कई सारी चीजें हैं और उन्होंने दो जो बात कही। सवाल तो ये है कि जो इस वक्त आंदोलन का पे बैठे हैं, जो जो कर रहे हैं पिछले 70-80 दिन से दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पे, वह उनका रुख साफ है, सरकार का रुख साफ है, तो दोनों अपनी अपनी बात में है। तो रास्ता तो हमें जब ही निकलेगा जब दोनों एक कदम आगे निकले, लेकिन इस वक्त जो दिख रहा है वो यही है कि सरकार ने अपनी बात कही और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारे संसद में कहा कि MSP नहीं हटेगा, APMC नहीं हटेगा, तो एक संसद के सामने जो सर्वोच्च हमारे पद्धति है उसमें उन्होंने बात रखी। अब किसान क्या, किसानों की बात भी साफ है, तो मध्यस्थता या मैं माफ कीजिएगा जो रास्ता अगर निकलेगा एक कदम कोई निकाले आगे तो निकल सकता है, वरना जहां है यथास्थिति दिख रही है आज की तारीख।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधू और केवी प्रसाद हमारे साथ थे किसान आंदोलन पर बात करने के लिए। इस मुद्दे का हल क्या निकलेगा, कब तक निकलेगा, अभी कोई नहीं कह सकता। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर डटे हुए हैं और पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक नन्ही सी बच्ची की जिसे दरकार है आपकी मदद की। और अब बात एक ऐसी नन्ही बच्ची की जिसे हंसना खिलखिलाना था लेकिन वो दिन ब दिन मुरझाती जा रही है। मुंबई की मासूम तीरा की तरह ही छत्तीसगढ़ के कोरबा की इस नन्ही बच्ची की सांसें धीरे धीरे थम रही हैं। पिछले 48 दिनों से वेंटिलेटर पर वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। 14 महीने की ही है और नाम है सृष्टि। उसे स्पाइनल मस्क्यूलर अट्रॉफी टाइप 1 नाम की बीमारी है। इसके इलाज के लिए करीब 22 करोड़ रुपए की एक दवा की जरूरत है और यह दवा विदेश से आनी है, लेकिन इसके लिए पैसे जमा कर पाना उसके परिवार के बूते के बाहर है। इस परिवार की आस और मासूम सृष्टि की सांस अब लोगों की दरियादिली पर टिकी हुई है।
माँ बाबा की सृष्टि, 14 महीने की मासूम बिटिया, ये उम्र तो गोद में पालने में खेलने की थी, अस्पताल के पालने में नहीं। कोरबा के SEL में काम करने वाले सतीश के घर में 22 नवंबर 2019 को मासूम सृष्टि आई। 5 महीने बाद वो बीमार रहने लगी। लॉकडाउन में पिता बेबस थे। 14 दिसंबर को वेल्लोर लेकर गए तो कई टेस्ट के बाद पता लगा कि उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है और इस बीमारी के इलाज के लिए महंगी दवा की जरूरत है।
और इसमें जिसका की दवा भारत में नहीं है, तो डॉक्टर लोग बोले कि इसका दवा विदेश में है जिसका की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 16 करोड़ रुपए उसका दाम होगा। और फिर वो अगर भारत में आए तो फिर उसके 6.5 करोड़ का टैक्स भी, टोटल 22.5 करोड़ का लगभग है आसपास में। फिर इसी तरह का केस मुंबई में भी आया था, तीरा कामत की बच्ची थी, तो उनको वो जो 6.5 करोड़ का जो टैक्स है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ़ किया है उनको, बाकी वो 16 करोड़ क्राउड फंडिंग के माध्यम से लोगों ने बहुत मदद किया, तो 3 महीने लोग जमा कर लिए 16 करोड़। अभी उनका इंजेक्शन आने वाला है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, उतना सारा पैसा तो है नहीं, तो मैं भी चाहता हूँ कि लोग मदद करें हमारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मेरी बच्ची की जान बचे।
वापसी में रास्ते में ही दूध तक पीने में दम घुटने लगा तो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जहाँ वो वेंटिलेटर पर है।
ये एक तरह का डिजेनरेटिव डिजीज है। डिजेनरेटिव डिजीज मतलब कि दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि दिन ब दिन नसें उसकी कमजोर होती जाती हैं, इसीलिए उसकी मांसपेशियां भी कमजोर होती चली जाती हैं।
इसको बचाने के लिए,
इसके बचाने के लिए जो है ना, सो एक इंजेक्शन आता है जो इंट्राथीकल लगता है, मतलब कि नस में पहुंचाई जाती है, वो करीब 94 लाख का एक वायल आता है और शुरू में 4 वायल लगता है और फिर करीब हर 4 महीने पे एक एक वायल लगता है। तो काफ़ी महंगी प्रक्रिया है। एक तो जीन थेरेपी भी होती है जो कि नस से दवाई पहुंचाई जाती है, उसकी दवाई काफ़ी महंगी है, $2.1 मिलियन का है।
सृष्टि को बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के महंगे इंजेक्शन और दवाओं की जरूरत है। उसके नाम पर बने मदद कोष में 14 दिनों में अब तक 356 लोगों ने 3,46,231 रुपए की मदद की है, जो 22 करोड़ रुपए के पहाड़ के सामने बहुत कम है। माता पिता को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा हमसे, आपसे उम्मीद है और डॉक्टरों को दवा की जल्द से जल्द जरूरत है।
उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो ऊपर से, उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसको भोजन मिलता रहे और सिर्फ पाइप से उसको खाना पहुंचाया जा रहा है, उसकी सांस रुकी हुई है तो उसके कारण उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन ये लंबा खींचने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ते वाली बीमारी है, ये बीमारी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है जब तक इसका जीन थेरेपी नहीं है। और जीन थेरेपी फिलहाल एक सपना ही दिख रहा है।
एक बच्ची का बाप हूँ, कई कहानियां कहता हूँ, लेकिन ऐसी कहानी से रूह कांप जाती है। एक बाप की बेबसी याद आती है सियाराम शरण गुप्त की पंक्तियां, फूल की चाह, जिसमें वो कहते थे, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, काली कांति पड़ गई इसकी, हंसी न जाने गई कहां, अटक रहे हैं प्राण क्षीणतर, सांसों में ही हाय यहाँ, अरे निष्ठुरे बड़ी हुई है यदि तेरी तृषा नितांत, तो कर ले उसे इसी क्षण मेरे इस जीवन से शांत। कोरबा से विजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।